प्यारे साथियों नमस्कार। आज 29 नवंबर 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने 11 उन नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अभी फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं जितिन वर्मा, आप करौली राजस्थान से हैं, प्रशांत सिंह सीतापुर से हैं, मनोरमा कुमारी शर्मा दिल्ली से हैं, मनोज रेवन्नाथ बुआ नासिक महाराष्ट्र से हैं, अभिनय कुमार गुप्ता इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, पिंटू कुमार दांगी चतरा झारखंड से हैं, खेमा राम पालोदी जोधपुर से हैं राजस्थान से, रोहित कुमार पटना बिहार से हैं, उमेश कुमार मथुरा उत्तर प्रदेश से हैं, मोहित साहू इंदौर मध्य प्रदेश से हैं और राजेंद्र सिंह झा धौलपुर राजस्थान से हैं। तो जितिन, प्रशांत, मनोरमा, मनोज, अभिमन्यु, पिंटू, खेमा, रोहित, उमेश, मोहित और राजेंद्र, आप सभी 11 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, दिन एक एक करके दिन लगातार कम होते जा रहे हैं और एक दिन दिन कम होते होते शून्य हो जाएंगे और मुझे वह दिन देखने को मिलेगा जब आप सब मेरे सामने होंगे। और अभी जो मैसेज मैं एक ध्वनि प्रचार या कह लीजिए ऑडियो मीडियम से आप तक पहुंचा रहा हूं, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से मुझे आप से बात करने का मौका मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा। मित्रों, हमारी टीम लगातार इस बात को लेकर बहुत उत्साहित होती है कि इतना बड़ा ज्ञान का मेला, इसे मैं एक तरह का कुंभ मेला जैसा ही कहता हूं, ऑर्गेनाइज होगा और उसमें आप सब नौजवान साथी अपने अपने चेहरों पर मुस्कान और महत्वाकांक्षाओं की उड़ान लिए हुए यहां हाजिर होंगे और पूरे के पूरे उस परिसर में एक अद्भुत किस्म की सकारात्मक ऊर्जा फैला रहे होंगे। हम सब उसका अनुभव करेंगे और वह अनुभव करेंगे, वह दिन भी अब क्रमशः नजदीक आता जा रहा है। और मित्रों, बस एक रिक्वेस्ट आप सबसे है कि आप अपनी चेतना को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएं, मानकर चलें कि यहां आपको कुछ न कुछ मिलेगा ही। जो आप यहां 15 दिन लगाएंगे, जो आप यहां की फीस देंगे, जिस उम्मीद से आप यहां आएंगे, विश्वास रखिए कि यदि आप एकेडमी का साथ देंगे तो आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। तो मित्रों, इस विश्वास के साथ और इस वायदे के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, अब हम आते हैं न्यूज एनालिसिस पर और शुरुआत करते हैं एआईआर न्यूज पर। दोस्तों, एआईआर न्यूज में सच पूछे तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, एक दो छोटी छोटी बातें हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ी बात ऐसी नहीं है जिसको आधार बनाकर हम लंबी बातचीत कर सकें। आप देख रहे हैं कि नोटबंदी का सिलसिला तो लगातार चल ही रहा है, इसमें एक नया डेवलपमेंट जो हुआ है फ्रेंड्स, वो है आयकर संशोधन विधेयक को लेकर। आपको मालूम है कि वित्त मंत्री जी ने कल लोकसभा में आयकर संशोधन विधेयक पेश किया है और उसमें आयकर के कुछ कानूनों में संशोधन किया जा रहा है। हम उसके उनकी बारीकियों में नहीं जाते, लेकिन आपने अखबारों में आज सुबह के पढ़ा है और काफी डिटेल में हेडलाइन मेन न्यूज के रूप में वो छपी है कि जिनके पास भी काला धन है, यदि वो चाहें तो अपने धन को फिर से डिक्लेयर कर सकते हैं और उस पर टैक्सेस उन्हें देने होंगे। आपको ध्यान होगा फ्रेंड्स कि कुछ दिन पहले, शायद सितंबर में, गवर्नमेंट ने सितंबर में वो खत्म हुई 2 महीने 3 के लिए एक योजना शुरू की थी, 2 महीने या 3 महीने के लिए, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि आपके पास अगर कोई ब्लैक मनी है तो आप उसे डिक्लेयर कर दीजिए और उसके बदले में आपको इतना टैक्स देना होगा और फिर वो सारे के सारे जो आपका पैसा है वो व्हाइट हो जाएगा, मतलब एक वैध मुद्रा में तब्दील हो जाएगा। उसमें लगभग लगभग 65,000 करोड़ रुपए की मुद्रा डिक्लेयर की गई थी, जो सच में जो अनुमान है उससे काफी कम था। उसी के कंटिन्यूएशन में अभी ये नोटबंदी का मामला आया है और अब सरकार ने फिर से उसी के पैरेलल ये एक सिस्टम चलाया है, इसमें टैक्स के रेट थोड़े से बढ़ा दिए हैं। सच पूछे मित्रों कि जैसे ही नोटबंदी की बात आई थी तो 2-3 दिन के बाद ही जब इस इश्यू पर बातचीत होने लगी थी तो मेरी एक यंग स्टूडेंट से बात हुई थी, जो मेरे बेटे का फ्रेंड है, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट भी रहा है। उसने अपनी बातचीत में एक बहुत अच्छी बात ये कही थी कि सरकार को चाहिए कि इसी के पैरेलल काले धन के डिक्लेरेशन की भी एक पॉलिसी लेकर के आए और बस उसके टैक्सेस थोड़े से बढ़ा दें। तो उससे होगा ये कि जो लोग बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, जो अपनी अपना पैसा बेकार करेंगे, जलाएंगे, फेंकेंगे, वो कम से कम सरकार को दे करके उसका आधा हिस्सा या 40% हिस्सा बचा तो लेंगे। उनको यही लगेगा कि भाई चलो 100% नष्ट होने से ज्यादा अच्छा है कि 60% नष्ट हो जाए, कुछ तो बचे। तो उस समय वह अगर योजना सरकार लेकर के आ जाती तो मुझे लगता है कि शायद कहीं और ज्यादा वो चीजें व्यावहारिक हो सकती थी, लेकिन सभी चीजों का अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि आगे किसी भी योजना को किस तरीके से एक्सेप्ट किया जाएगा, वो क्या रूप लेगी। लेकिन अभी जो सरकार इसको लेकर के आई है, इसको इसका लोग स्वागत कर रहे हैं। डेफिनेटली कुछ लोग इसकी आलोचना भी करेंगे और दोनों ही चीजें एक साथ होती भी हैं, उसमें कोई परेशान होने की बात भी नहीं है। लेकिन मित्रों, अब आपको काले धन के साथ ये जो एक योजना आई है और आयकर संशोधन विधेयक जो अभी आया है, इस पर थोड़ी सी नजर रखनी होगी। देखते हैं कि ये किस तरीके से क्या शेप लेता है। एक बात आप ध्यान रखिए मित्रों, ये आयकर संशोधन विधेयक है, यह मूलतः धन विधेयक है ना, मनी बिल है, और ये लोकसभा से ही पारित होना कंपलसरी है। बस ये लोकसभा से पारित होगा, लोकसभा में पारित हो ही जाएगा। आपको मालूम है सरकार बहुमत में है, सरकार बहुमत में ही रहती है, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा इस पर बहस कर सकती है, अपनी तरफ से संशोधन भी सुझा सकती है और वो सारे काम उसको विद इन 14 डेज करने होंगे, उससे ज्यादा वह उस विधेयक को रोक ही नहीं सकती और उस पर मतदान भी राज्यसभा में नहीं हो सकता क्योंकि धन विधेयक है, मनी बिल के बारे में ये रूल आपको मालूम है, और 14 दिन के अंदर अंदर उसे इसे लोकसभा को लौटाना पड़ेगा। अब ये लोकसभा के ऊपर है कि वो उसके संशोधनों को मानती है या नहीं मानती है। इसके बाद लोकसभा इस बिल को राष्ट्रपति जी के पास भेज देगा और राष्ट्रपति जी जैसे ही उस पर हस्ताक्षर करेंगे, ये संशोधन विधेयक पारित हो जाएगा और लागू हो जाएगा। इसलिए इसके पारित होने में किसी तरह का कोई संदेह नहीं है और न कोई बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि राज्यसभा के लिए वो 14 डेज है अधिकतम और राष्ट्रपति जी के लिए भी अधिकतम 14 डेज ही है। इस मामले में तो कम से कम सरकार अपने आप को यहां सुरक्षित महसूस कर सकती है एज फार एज ये जो इस बिल का संबंध है। तो मित्रों, जो दूसरी खबर थी वो दूसरी खबर खासकर साइंस से जुड़ी हुई थोड़ी सी खबर है और 2013 में इसी से संबंधित कुछ दूसरे अंगूठा जो रख करके मशीन में पहचान बताने वाली जो मशीन आई थी उसको लेकर के एक प्रश्न पूछा गया था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये जो अभी POS मशीन जो आई है जिसकी चर्चा अभी हो रही है, साइंस के अंदर इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये जो POS मशीन है, इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स पॉइंट ऑफ सेल, और ये एक तरीके से एक ऐसी मशीन है जो कहिए एक स्वाइप मशीन है। जब आप अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड किसी दुकानदार को देते हैं वहां से सामान खरीदने के बाद, तो आपने देखा है कि उसको वो एक मशीन पर वो स्वाइप करता है या यू कह लीजिए कि रग उसमें डाल करके उसे खींचता है और फिर वो पैसा उसमें आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से वहां ट्रांसफर हो जाता है। तो ये जो स्वाइप मशीन है पीओएस मशीन है, इसके द्वारा कार्ड को स्वाइप करने की सुविधा मिलती है। मित्रों, अब ये जो नोटबंदी के बाद आप देख रहे हैं कि लगातार कैशलेस इकोनॉमी की बात हो रही है, कैशलेस इकोनॉमी, और उसमें इस स्वाइप मशीन का इस पीओएस मशीन का बहुत बड़ा रोल होगा। ये बहुत आसान होता है, हाथ में रख करके भी इसे बड़े आराम से चलाया जा सकता है और आप छोटा दुकानदार भी इसे रख सके। इस लिहाज से सरकार ने इस पर अभी सारे जो टैक्सेस वगैरह हैं वो सब माफ कर रखे हैं और बहुत तेजी से इसकी डिमांड बढ़ भी रही है और अब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ऐसा होगा जबकि छोटी छोटी दुकानों पर भी आपको POS मशीन दिखाई देने लगेंगी और फिर आप क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से अपने खरीदे हुए सामान का भुगतान कर सकेंगे। बस एक ही संकट इसमें है कि जो 90% मशीनें इसमें हैं उनका आयात हो रहा है, हमारे यहां उतनी ज्यादा संख्या में ये मशीनें तैयार नहीं हो रही है, लेकिन चूंकि अभी हमारी जरूरत है तो ऐसी स्थिति में सरकार ने उस पर जो शुल्क, जो भी कस्टम ड्यूटी, जो भी आयात शुल्क वगैरह होते हैं उनमें काफी छूट दी है, जीरो जैसा, जीरो के लगभग उसे पहुंचा दिया है। तो मित्रों इसके बारे में थोड़ा सा आप और देख लीजिएगा कि ये किस तरीके से काम करती है POS मशीन। तो मित्रों न्यूज AIR न्यूज से बस ये दो खबरें हैं। अब हम आते हैं आज के न्यूज़पेपर पर। न्यूज़पेपर में दोस्तों एक दो ऐसे टॉपिक हैं जिनको लेकर मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें करना चाहूंगा। फ्रेंड्स एक जो टॉपिक है वो खासकर नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर है। अगर आप अनसॉल्व्ड पेपर्स उठा करके देखें तो शिक्षा पर एक प्रश्न जरूर आता है, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, मिडिल लेवल एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो या प्रोफेशनल एजुकेशन हो। जो नालंदा विश्वविद्यालय का मामला ये हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। अगर आपको ध्यान होगा तो 2015 में एक पिछले ही साल जो अमर्त सेन है, जो अर्थशास्त्री हैं और जिनको नोबेल प्राइज मिला है, वो इसके चांसलर थे और उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका यह कहना था कि सरकार इसकी स्वायत्तता पर हस्तक्षेप कर रही है। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरे उसके चांसलर बनाए गए और चांसलर भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, सिंगापुर के विदेश मंत्री रह चुके थे जॉर्ज यो, उनको चांसलर बनाया गया। अभी जुलाई में ही बनाया गया था, उन्होंने भी अभी नवंबर में इस्तीफा दे दिया। उनका भी कहना यही है कि जो सरकार है वो इस इंस्टीट्यूशन की स्वायत्तता पर हस्तक्षेप कर रही है। कुल मिलाकर फ्रेंड्स हुआ ये था कि एक बोर्ड होता है, आपको मालूम है इन सबका एक बोर्ड होता है, संचालक बोर्ड होता है जो सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। तो सरकार ने उस पुराने बोर्ड को भंग कर दिया और नए संचालक बोर्ड का गठन कर दिया, नया बोर्ड गठित कर दिया। इम्पॉर्टेंट बात यह है, या आश्चर्य की बात यह है, या कह लीजिए दुख की बात यह है कि सरकार ने बोर्ड को भंग करने के मामले में चांसलर से कोई सलाह नहीं ली, नए बोर्ड के गठन के बारे में भी चांसलर से कोई सलाह नहीं ली, और यह भी कहा जा रहा है कि जब नए वाइस चांसलर की नियुक्ति की बात आई तब भी उनसे कुछ पूछा नहीं गया। तो इस तरीके को भी, काम करने के इस तरीके को भी वहां के जो चांसलर हैं उन्होंने इसकी स्वायत्तता पर सरकार का हस्तक्षेप मानते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जब हमारे स्मृति ईरानी जी भी जब शिक्षा मंत्री थीं और अभी भी इस तरह के विवाद उठते रहे हैं, चाहे वो कला और संस्कृति के संस्थान हो या फिल्म पूना का फिल्म इंस्टीट्यूट हो, और भी जो दूसरे मामले रहे हैं उनको लेकर के लगातार सरकार पर यह आरोप लगता रहा है कि सरकार इन संस्थानों को नियंत्रित करना चाहती है, इनको इनकी स्वायत्तता नहीं रहने देना चाहती है, और यदि इनकी स्वायत्तता नहीं रहने दी गई तो जो शिक्षा का जो स्तर है उस पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यह प्रश्न लगातार उठाया जा रहा है, उसी क्रम की यह घटना है। तो मित्रों आप इस घटना को जरूर देखिएगा, इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल कमेंट जनसत्ता में छपा है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, उसमें आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। और जैसा कि मैंने बहुत पहले कहा था, मुझे याद है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं उनके लिए आप कुछ पेज सुरक्षित रख लें और उसमें नई नई घटनाओं को नोट करते चलें। तो मुझे लगता है कि यह घटना आपको उसमें नोट कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो नालंदा विश्वविद्यालय है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय में तब्दील करने का सपना देखा गया था और इसका उद्देश्य यही था कि जो हमारे जो प्राचीन विरासत है कैसे उसके गौरव को पुनर्स्थापित किया जाए और खासकर पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनसे कैसे भारत के सांस्कृतिक और बौद्धिक तालमेल बढ़ाया जाए, जिसमें जापान और सिंगापुर जैसे देश शामिल हैं। दोस्तों जो दूसरी क्लिपिंग्स, इंपॉर्टेंट क्लिपिंग्स है, वो खासकर न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर है। इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो मामला है वो अभी फिर से एक बार केंद्र और उच्चतम न्यायालय के बीच विवाद का मामला बन गया। हालांकि इस सरकार के आने के बाद से, जब सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन करने संबंधी विधेयक को पारित किया और बाद में न्यायिक पुनरीक्षा के आधार पर न्यायालय ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तभी से यह एक बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है। अब जबकि न्यायालय के द्वारा सुझाए गए कुछ नामों को सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, वे नाम फिर उच्चतम न्यायालय वापस गए और उच्चतम न्यायालय ने जब फिर से उन नामों में से कुछ को छोड़कर बाकी नाम फिर से सरकार के पास भेज दिए, तो फिर से एक विवाद का मुद्दा यह बन गया है। अब मित्रों, सवाल यह है कि क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पूरी तरह से न्यायाधीशों को ही स्वतंत्रता दी जानी चाहिए या सरकार का भी उसमें कोई हस्तक्षेप हो सकता है? क्योंकि देखिए, जुडिशियरी की जो इंडिपेंडेंसी है, ये तो हमारे संविधान के मूल आत्मा का एक हिस्सा है। ये भी लोग जानते हैं कि अगर जुडिशियरी की इंडिपेंडेंसी को दबाने की कोशिश की गई तो इसके बहुत ही खतरनाक परिणाम होंगे। अब सोचने की बात यह है कि यदि नियुक्ति में सरकार का भी हाथ होता है तो क्या जुडिशियरी की इंडिपेंडेंसी इससे बाधित होगी? जैसे अमेरिका का अगर हम उदाहरण लें फ्रेंड्स, तो अमेरिका में तो जुडिशियरी बहुत इंडिपेंडेंट है और यूं कह लीजिए कि भारत से भी ज्यादा शक्तिशाली जुडिशियरी अमेरिका की है, लेकिन वहां जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो सरकार करती है। तो सरकार ने नियुक्ति कर दी, बात खत्म हो गई, उससे इंडिपेंडेंसी बाधित नहीं होती। जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को ले देखिए, सीएजी की नियुक्ति सरकार करती है। हमारे और भी जो दूसरे संस्थान है इस तरह के, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति सरकार करती है, लेकिन कर देने के बाद सरकार वो पूरी इंडिपेंडेंसी के साथ काम करते हैं, वो सरकार के इशारे पर काम नहीं करते। ये इस तरह की व्यवस्था की हुई और हमारे सामने प्रमाण है, और भारत में तो ऐसा नहीं है लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में जहां न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार का हाथ होता है लेकिन वो पूरी इंडिपेंडेंसी के साथ काम करते हैं। तो ये एक डिबेटेबल मामला है कि क्या सरकार यदि हस्तक्षेप करने लगे, हस्तक्षेप शब्द इस्तेमाल ना करें, यदि जुडिशरी की नियुक्ति में वो अपनी भूमिका दिखाने लगे तो उनकी स्वतंत्रता कैसे बाधित होगी? क्योंकि जो न्यायाधीश हैं, एक बार नियुक्त हो जाने के बाद यदि परिस्थितियां उस तरीके की हैं, उस तरह की चीजें, उस तरह के उनको संवैधानिक प्रोटेक्शन दिए गए हैं जहां वो पूरी तरह से स्वतंत्र होकर निर्भय होकर अपना काम कर सकते हैं, तो फिर वो ऐसा काम करेंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर आपको बहुत गहराई से विचार करना है, इस टॉपिक पर ध्यान भी देना है। और इस टॉपिक को लेकर हिंदुस्तान, दैनिक हिंदुस्तान में भी और इकोनॉमिक टाइम्स में भी दो आर्टिकल छपे हैं। सच है कि दोनों आर्टिकल एक ही सुधांशु रंजन के हैं, इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन भर है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इसमें आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स जानने को मिल जाएंगे। दोस्तों, इसके अतिरिक्त हिंदुस्तान का एक और आर्टिकल है जो खासकर जो हमारे उद्योगों के जो बोर्ड होते हैं उनमें कुछ स्वतंत्र निदेशक रखे जाते हैं। मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो बैच में आते हैं उनको बोर्ड में का किस तरीके से गठन होता है, वो किस तरीके से काम करते हैं, उसके बारे में बताया था, उसको बस याद कर लें। तो वो जो स्वतंत्र निदेशक है वास्तव में कितने स्वतंत्र होते हैं, इसको लेकर के एक आर्टिकल है। और आप देख रहे हैं कि टाटा में जो साइरस मिस्त्री थे उनको हटाया गया, तो ये एक हॉट टॉपिक बना है और काफी विवादास्पद टॉपिक बन गया है। तो उस लिहाज से यह आर्टिकल भी मुझे थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट मालूम पड़ रहा है। तो दोस्तों, इसके अतिरिक्त और थोड़े दूसरे छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, उन्हें आप अपनी जरूरत के हिसाब से देख लीजिएगा। तो मित्रों, यह था न्यूज़पेपर से। अब मैं अंतिम चरण पे आता हूं जो ईमेल का चरण है। तो सबसे पहले मैं शिव दयाल कुमार जो कैमूर बिहार से हैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने, वो हमारे फिफ्थ बैच के स्टूडेंट रहे हैं और उन्होंने अपने अंदर आए हुए परिवर्तनों के बारे में लिखा है कि अब वो कैसा महसूस करते हैं। तो शिवदयाल, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जो परिवर्तन है वो लगातार निरंतर आगे बढ़ते रहें और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। तो सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, राकेश कुमार जो नागौर राजस्थान से हैं, अनिकेत, हेमंत पांडे, अविनाश कुमार चौबे, परम वीर प्रतीक, सी के मौर्य और सतीश जायसवाल। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।